الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 33 سے ہم شروع کر رہے ہیں۔ پیچھے تمہید مکمل ہو گئی تھی اس سورہ کی، جس میں بہت سارے مضامین کو اللہ تعالیٰ نے تمہید کے طور پر بیان کیا، جس میں اللہ تعالیٰ کی ذات حی و قیوم کے پہلو سے کتاب کو نازل کرنے کے اوپر بات ہوئی، پھر آیت کی جو دو قسمیں ہیں قرآن کی آیتوں کی ان کا بیان ہوا کہ اس میں متشابہ آیتیں بھی ہیں اور محکم آیتیں بھی ہیں، پھر یہود کے بارے میں بتایا کہ اہل کتاب کے بارے میں کہ یہ کیوں نہیں مان رہے ہیں، پھر اہل کتاب کے بارے میں بتایا کہ ان کے ساتھ اب کیا ہونے والا ہے، اور مسلمانوں کو بھی بتایا کہ اب تم تیار ہو جاؤ، معاملہ کس طرح کا ہے، ان کے ساتھ دوستی نہیں کرنی ہے۔ اس طرح کے احکام کے بعد اب جو سورہ کا اصل مضمون ہے اس کی طرف ہم بات بڑھ رہی ہے۔ اہل کتاب کے دو حصے تھے، ایک یہود اور ایک نصارہ۔ نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے، حضرت مریم کو اللہ کی نعوذ باللہ بیوی مانتے تھے، جس کے نتیجے میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ تین خداؤں کا گویا تصور بن جاتا ہے، جس کو تثلیث کہتے ہیں۔ یہ قرآن مجید کے علاقے کے جو جہاں قرآن مجید نازل ہوا وہاں کے نصارہ کا یہ عقیدہ واضح طور پر معلوم ہے، لیکن بعد میں شاید قرآن کی تنقید کی وجہ سے یا دوسرے اسباب کی وجہ سے آہستہ آہستہ اہل کتاب نے کہنا شروع کیا کہ ہم اس طرح سے اللہ کا بیٹا نہیں مانتے بلکہ روحانی معنی مانتے ہیں۔ لیکن قرآن مجید نے جس طرح سے یہ سورہ میں مضمون اٹھایا ہے اس سے واضح طور پر لگتا ہے کہ وہ ایسا ہی بیٹا مانتے تھے جیسے ہم اپنا بیٹا مانتے ہیں کسی کو، اور اس کو پوری طرح سے وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اگر آپ انجیلوں کا آج بھی مطالعہ کریں تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ صرف اپنے آپ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں بلکہ تمام لوگوں کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں۔ عبرانی زبان میں بیٹا بمانا کنبہ، اور کنبہ اردو میں بھی، قدیم اردو میں بھی ہم تمام انسانوں کو اللہ کا کنبہ کر کے کہہ لیتے ہیں، تو اس کے لفظ کا جو بگاڑ ہے وہ غالباً یہ شکل اختیار کر گیا۔ یہ تمہید اللہ تعالیٰ نے بہت ہی شروع سے بات کو اٹھا دیا ہے کہ حضرت عیسیٰ کی حقیقت کو بیان کرنے سے پہلے پوری ایک تاریخ کو ایک جملے میں سمیٹ دیا ہے۔ فرمایا ہے کہ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو، نوح علیہ السلام کو، اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو، اور عمران کی اولاد کو، علیہ السلام کہہ لیجئے، یہ عمران جو ہیں یہ حضرت عیسیٰ کے نانا کا نام ہے، علی العالمین دنیا والوں پر ترجیح دی ہے۔ یہ بہت، یوں سمجھ لیجئے کہ ایک ایسی تمہید ہے کہ جو لاجواب کر دینے والی ہے، کہ آدمی پوری تاریخ کو ایک جملے میں سنا کر بات واضح کر دے کہ حقیقت حضرت عیسیٰ کی کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے آدم کو چنا، نوح کو چنا، ابراہیم علیہ السلام کی آل میں سے چنا، اور عمران کی آل میں سے چنا۔ تو حضرت عیسیٰ کون ہوئے؟ عمران جو بھی ہیں ان کی اولاد میں سے ہوئے، ٹھیک ہے، اور ان کو میں نے چنا ہے تمام لوگوں پر۔ عالمین میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اس کا مطلب دنیا ہے، لیکن دنیا بول کر لوگ مراد ہوتے ہیں، جہان مراد نہیں ہوتے، سوائے اس کے کہ کرینہ دوسری طرف لے جائے۔ جیسے ہم اس جملے میں کہ دنیا خراب ہو گئی ہے، دنیا کا اب کیا کریں، دنیا ہماری بات نہیں سنتی ہے، اس سے مراد انسان ہوتے ہیں، ان سے مراد اینٹ روڑا پتھر اور جانور پرندے چرندے نہیں ہوتے، دنیا مراد، دنیا بول کر ہم لوگ مراد لیتے ہیں۔ تو آدم علیہ السلام کو چنا، وہ بھی انسان تھے، نوح علیہ السلام کو چنا، وہ بھی انسان تھے، ابراہیم علیہ السلام کو چنا، وہ بھی انسان تھے، اور عمران علیہ السلام کی اولاد کو چنا تو وہ بھی انسان ہے۔ تو عمران کے نواسیہ کیا ہوں گے؟ انسان۔ ठीक है, ये उसकी तमहीद बांध दी। तो गोया पूरी सफ़ में खड़ा कर दिया कि मैंने किन किन को चुना है। तो हज़रत ईसा, अभी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र करना पेश नज़र नहीं, वो आगे चलकर आएगा, क्योंकि अगर यहाँ जिक्र हो जाता तो फिर वो तारीख सारी ख़राब हो जानी थी। तो हमने आदम को चुना, नूह को चुना, इब्राहिम की और आल को चुना, और इमरान की आल को चुना, तमाम दुनिया वालों पर यानी लोगों पर चुना कि वो, ये जो चारों पांचों बुज़ुर्गों का नाम लिया गया है, ये अल्लाह का दीन इन तक पहुंचाएं। तो ये बात वाज़ेह रहनी चाहिए कि ये सारे के सारे इंसान थे, इनके यहाँ आम तरीके से औलाद हुई, जिस तरह इब्राहिम अलैहिस्सलाम के यहाँ औलाद हुई, इसी तरह इमरान के यहाँ औलाद हुई, कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है। और चुनाव अल्लाह ने किया है। अब चुनाव करने का मतलब है कि ये खुदा नहीं है, खुदा का चुनाव खुदा नहीं कर सकता, बंदों का चुनाव कर सकता है, अंबिया का कर सकता है, हदायत देने वालों का कर सकता है। तो ये जो चुनाव है ये अल्लाह ने किया है, और किया किन में से है, इंसानों की औलाद में से किया। हाँ, औलादें किन किन की हैं, वो इमरान की औलाद है, वो इब्राहिम की हैं, हज़रत नूह हैं। तो ये एक वाज़ह तौर पर अल्लाह ताला ने यहाँ बयान कर दिया है। ये भी एक दिलचस्प बात है कि आदम और नूह अलैहिस्सलाम का अकेले अकेले का जिक्र है, आल का जिक्र नहीं है। ये नहीं कहा गया कि आदम की औलाद को चुना, सारी आदम की औलाद। तो अगर आले आदम कहा जाता तो बस सारी हो जाते। तो आदम अकेले चुने गए, उनकी औलाद में बाद में चुनाव हुआ। नूह अलैहिस्सलाम भी अकेले चुने गए, लेकिन ये फ़ैसला नहीं हुआ कि उनकी औलाद में से किसी को चुना जाएगा, लाजम नहीं हुआ। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम चुने गए, लेकिन उनकी आल का भी फ़ैसला हुआ, जैसा कि पीछे हम सूरह बकरा में पढ़ चुके हैं कि अल्लाह ताला ने कहा कि मैं तुम्हें इमाम बनाने लगा हूँ, तो उन्होंने कहा कि मेरी ज़ुर्रियत, तो अल्लाह ने कहा हाँ तुम्हारी ज़ुर्रियत, लेकिन ज़ालिम इसमें शामिल नहीं होंगे मेरे वादे में। ऐसा ही इमरान जो हैं, ये ख़ुद नहीं चुने गए, लेकिन इनकी आल चुनी गई, उनमें से भी एक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, वो भी सिर्फ नवासे। तो ये तमहीद यहाँ से उठाई है। अब मैं चूँकि 14 सदियों के बाद बैठा हुआ हूँ, लेकिन जैसे ही पुराने लोगों ने, जिनके सामने बाकी आयतें नहीं थी अगली वाली, उन्होंने जब ये आयत सुनी होगी तो उनके कान खड़े हो गए कि किस इमरान का जिक्र हो रहा है। बस इतना किया अल्लाह ताला ने, आदम, नूह, इब्राहिम और इमरान सबको इकट्ठा बयान करके कह दिया कि हमने इनको चुना। अगला जुमला बड़ा मुश्किल का बायस हो गया, ज़ुर्रियतन बाज़ुहा मिन बाज़। हमारे यहाँ अजमी जो मुफस्सरीन हैं, उन्होंने इसका मतलब लिया है कि वो एक दूसरे की औलाद है, कि जैसे आदम की औलाद नूह है, नूह की औलाद इब्राहिम है, इब्राहिम की औलाद इमरान है, इस तरह से चला रहा है। लेकिन ज़ुर्रियतन बाज़ुहा मिन बाज़ ये मुहावरा सा है, इसके ये मानी नहीं होते कि एक दूसरे की औलाद। एक दूसरे की औलाद का जुमला तब बोला जाएगा कि आदम नूह की औलाद हों और नूह आदम की औलाद हों, तब ये कहा जाएगा कोई एक दूसरे की औलाद, वरना ये ज़ुर्रियतन बाज़ुहा मिन बाज़ बोला नहीं जा सकता। तो ज़ुर्रियतन मिन बाज़ुहा मिन बाज़ का अरबी ज़ुबान में मुहावरतन मतलब है बिल्कुल एक जैसे, इससे ज़्यादा इसका कोई मतलब नहीं है कि आदम, नूह, इब्राहिम और इमरान ये सब के सब एक जैसे हैं इंसान, इनमें कोई भी खुदा नहीं है, इनमें कोई भी खुदा की औलाद नहीं है, इनमें कोई भी इलाह बनने की सलाहियत नहीं रखता, ये बयान कर दिया। ज़ुर्रियतन बाज़ुहा मिन बाज़ वल्लाहु समीउन अलीम, और अल्लाह ताला जो भी काम किया, इनका चुनाव किया, इनको नबूवत अता की, तो ये अल्लाह ताला ने अपने समीउन अलीम होने की बुनियाद पर किया है। वो जानते भी हैं कि इनको नबी बनाना है, और बाज़ लोगों ने दुआ भी की तो उनकी बात दुआ सुनने के बाद मैंने उनको औलाद अदा की, जिसमें हज़रत मरियम खुद आगे आ रही हैं, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दोनों बेटे दुआ के नतीजे में पैदा हुए हैं। और तो इस तरह से समी अलीम का मतलब एक यह है कि अल्लाह ताला जो कुछ करते हैं वो सुनते जानते हुए करते हैं, और दूसरा ये कि कुछ की दुआएँ सुनकर उनको, ये खुद इब्राहिम ने जब अल्लाह ताला ने इनको इमाम बनाया तो औलाद के बारे में उन्होंने मुतालबा किया था, तो अल्लाह ने कहा हाँ मेरा प्रोग्राम तुम्हारी औलाद के बारे में भी है, लेकिन ज़ालिम इसमें शामिल नहीं होंगे। तो समी यहाँ पर इस पहलू से आया है कि अल्लाह ने बाज़ बुज़ुर्गों की दुआ सुनकर उनको औलाद दी है। आगे चलकर हज़रत ज़करिया का भी जिक्र आएगा कि उन्होंने भी सैयदा मरियम को देखकर मुतासिर हुए और नेक औलाद की दुआ कर दी, अल्लाह ने उनकी दुआ भी सुन ली। तो समी का यहाँ मतलब है। तो फरमाया कि आदम को मैंने चुना, अल्लाह ने चुना, आदम को चुना, नूह को चुना, इब्राहिम को चुना, इमरान को चुना अलैहिस्सलाम, लोगों पर हदायत देने के लिए। सब के सब एक जैसे हैं, इनमें से कोई भी गैर इंसान नहीं है, सब इंसान हैं, आला दर्जे के हैं। लेकिन अल्लाह ने इनको नबी बनाने का फ़ैसला अपने इल्म की बुनियाद पर और अपने समी और बसीर होने की बुनियाद पर किया है। अब सैयदा मरियम की वालिदा, इमरान की बीवी, हज़रत मरियम की जो वालिदा हैं, उनका नाम नहीं आया लेकिन उनके वालिद का नाम इमरान आ गया है। तो फरमाया इस कालत इमरा तो इमरान रब्बी इन्नी नज़र तो लका माफ़ी बतनी मुहर्ररन। तो याद करो कि जब इमरान की बीवी यानी हज़रत मरियम की वालदा ने कहा ऐ मेरे रब, जो मेरे पेट में है मैं उसको आज़ाद करते हुए आपकी नज़र करती हूँ। अहले किताब के अंदर ये रवाज था कि बास लोग अपनी औलाद को अल्लाह के घर की खिदमत के लिए नज़र कर देते थे। ख़ुद इस्माइल अलैहिस्सलाम बैतुल्लाह के लिए नज़र किए गए थे और इसी तरह इनके यहाँ ये रवाज चला रहा था कि किसी बेटे को नज़र कर देते और फिर वो अल्लाह के घर की, अल्लाह के दीन की खिदमत करता था। तो हज़रत मरियम की वालिदा ने इसी ख्याल से कि अब जो मेरे यहाँ औलाद होगी वो अल्लाह के घर की खादम होगी, ये उन्होंने नज़र कर दी कि जो मेरे औलाद होने वाली है मैं उसको अल्लाह की राह में नज़र करती हूँ। तो जुमला देखे कितना भला है कि रब्बी इन्नी नज़र तू लका माफ़ी बतनी मुहर्ररन, ऐ अल्लाह जो मेरे पेट में है मैं उसको आपकी नज़र करती हूँ। मुहर्ररन का मतलब है कि आज़ाद करते हुए, आज़ाद ये आज़ादी थे, ग़ुलाम नहीं थे। यहाँ आज़ाद करने का मतलब यह है कि मेरी तरफ़ से उस पर कोई पाबंदी नहीं होगी, वो कमाए ना कमाए, खाए ना खाए, मेरी तरफ़ से कोई मुतालबा नहीं होगा कि मेरे बुढ़ापे में मेरी खिदमत करे, मैं मुझे कमा कर ला कर दे, ये मेरी तमन्ना नहीं होगी। वो बस पूरी आज़ादी से अल्लाह के घर की, अल्लाह के दीन की खिदमत करेगा। तो फरमाया कि जब याद करो जब इमरान की ज़ौजा मोहतरमा, इमरान जो है ये अरबी ज़ुबान का असलूब है, हमारे यहाँ भी कदीम उर्दू में और पंजाबी में इस्तेमाल होता रहा कि औरत का लफ्ज़ बोलकर बीवी मुराद होती है और मर्द का लफ्ज़ बोलकर शोहर मुराद होता है। मसलन कहेंगे कि उसकी औरत मतलब उसकी बीवी। तो अर्रिजालु कवामून अलन निसा में भी अन्निसा और रिजाल जो है वो शोहर के मानी में इस्तेमाल हुआ है और निसा बीवी के मानी में इस्तेमाल हुआ है कि तमाम शोहर अपनी बीवियों पर कवाम हैं। ये नहीं कि तमाम औरतें, तमाम मर्द तमाम औरतों पर कवाम है, ये नहीं है, ये वाज़ फ़र्क है। तो इमरा तो इमरान का मतलब है इमरान की बीवी, इमरा तो फिरौन भी आया है एक मकाम पर, तो फिरौन की बीवी मुराद। तो इमरात यानी औरत बोलकर बीवी मुराद है। हमारी उर्दू में भी कदीम उर्दू में इस्तेमाल होता रहा है फ़लाँ की औरत यानी फ़लाँ की बीवी, फ़लाँ का मर्द यानी बंदा भी बोलते हैं पंजाबी में, ख़वातीन कहेंगी मेरा बंदा घर में नहीं है, मेरा शोहर घर में नहीं है। तो मुहर्रर का मतलब वाजी हो गया। तो हज़रत मरियम की वालिदा इमरान की बीवी ज़ौजा मोहतरमा ने अपने यहाँ होने वाली औलाद को नज़र कर दिया। फ़तकब्बल मिन्नी, तो उन्होंने कहा कि ऐ अल्लाह तू मेरी इस नज़र को कबूल फरमा। अब ये बाज़ का होता है किस्मत की बात है कि पता नहीं कितने इसराइलियों ने अपनी औलाद को नज़र किया होगा, लेकिन जो ये नज़र कबूल हो रही है तारीख में कभी नहीं हुई। तो उन्होंने आगे से कहा कि तकब्बल में नहीं, मेरी तरफ़ से कबूल कीजिए, इन्ना कान तस्समीउल अलीम, आप मेरी इस पुकार को सुनने वाले हैं और मेरी नियतों को, मेरे इरादों को, मेरी औलाद जो होने वाली उसको जानते हैं। क्या बात है, जो पुराने बुज़ुर्ग हैं जिनको दीन की समझ होती है वो उनके जुमले ही बता रहे होते हैं कि वो किस बसीरत के साथ बात कर रहे हैं। उनको ऐसे तरीके से, अब देखिए उन्होंने बात की है, खैर कलाम अल्लाह का है, यहाँ पर उनकी बात को अल्लाह ने अपने ज़ुबान में मुंतकिल किया, वो तो किसी और ज़ुबान में बात कर रही थी, लेकिन जो जुमला उनका अल्लाह ने तर्जमा किया है वो भी देखिए कि क्या उसके अज्ज़ा हैं। मैं अपनी औलाद को जो होने वाली है उसको पूरी तरह से आज़ाद करके आपकी नज़र कर रही हूँ, आप मेरी नज़र को कबूल फरमाइए, क्योंकि आप सुनने वाले हैं, मेरी पुकार ये सुन रहे हैं, मेरी नज़र का ये ऐलान सुन रहे हैं, और आप जानते हैं कि मैं किस नीयत, किस इरादे, किस तवक्को के साथ आपकी खिदमत में इसको नज़र कर रही हूँ। तो अब ये नज़र हो गई, अल्लाह ने कबूल कर लिया। ठीक है, तो आगे क्या हुआ कि फलम्मा वज़अत, हाँ औलाद पैदा हो गई। अभी तो जब नज़र मानी उन्होंने वो पेट में थी, लेकिन अब औलाद हो गई। कालत रब्बी इन्नी वज़अतुहा उनसा, अब उन्होंने अपने ख्याल में बेटा अल्लाह की नज़र किया था, क्योंकि पुराने ज़माने में दीन की खिदमत वगैरह के लिए बेटियों को इस तरह से नज़र करने का रवाज नहीं था। तो उन्होंने तो ये ख्याल किया था कि बेटा होगा, लेकिन पुकार उठी कि रब्बी ऐ अल्लाह मैंने तो बेटी जन दी है, ख्याल था मेरा कि मैं बेटा जनूंगी और आपकी दीन की खिदमत करेगा। तो अल्लाह ने फरमाया कि वल्लाहु आलम बिमा वज़अत, अल्लाह बेहतर जानता था कि उसने क्या पैदा करना है। वलैस ज़िक्रु कल उनसा, लेकिन जिस काम के लिए मैंने इस नज़र को कबूल किया उस काम के लिए लड़का बेटी जैसा नहीं है। मैंने जो काम करना है वो लड़की से काम लेना था, मुझे मरियम चाहिए थी, बेटा नहीं चाहिए था। लोगों ने इसका मतलब बाज़ ने यह मतलब ले लिया है कि जो वो डर गई कि अब अल्लाह ताला भी कह रहे हैं कि लड़का लड़की जैसा तो नहीं होता, चलो काम चला लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और वो जो जुमला बोल रही हैं कि यार ना मैंने बेटी पैदा कर दी है, उनका बाद लोगों ने इसका मतलब लिया कि उन्होंने हकीर समझा कि ओहो मेरा ये तोहफा हकीर हो गया। नहीं, वो बेटे को नज़र कर रही थी दीन की खिदमत के लिए, तो अब वो परेशान हो रही हैं कि बेटी को पता नहीं नज़र करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि रवाज नहीं है। तो बस इतनी सी बात है, इसका कोई ताल्लुक बेटे के बेहतर होने या बेटी के कमतर होने का कोई जिक्र नहीं है। तो अल्लाह ने फरमाया कि लड़का लड़की जैसा नहीं हो सकता, मैंने जो काम लेना है उसके लिए मुझे मरियम चाहिए। तो वह इन्नी सम्मई तुहा मरियम, आगे उन्होंने कहा कि मैंने इसका नाम जो है वो मरियम रखा है। अब जैसे मैंने पहले बताया कि ये खातून जो भी हैं इनको दीन की समझ है, पूरी बात को जानती हैं कि मैं क्या करने जा रही हूँ। तो फरमाती हैं कि मैंने अपने इस लड़की का नाम मरियम रख दिया है। वह इन्नी ओ ईज़ुहा बिक, ऐ अल्लाह मैं इसको आपकी पनाह में देती हूँ। वह ज़ुर्रियतुहा, और इसकी औलाद को भी आपकी पनाह में देती हूँ। और देखिए जुमले कितने ज़बरदस्त हैं, अल्लाह ताला ने हज़रत मरियम के यहाँ ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा करना, ठीक है। तो वो नज़र क्या मान रही हैं, वो नज़र ये मान रही हैं कि मैं आपको अपनी बेटी आपके हवाले कर रही हूँ कि आपकी पनाह में हो और इसकी औलाद भी आपकी पनाह में हो, कि ना मरियम बुरी हो ना उनका बेटा ईसा इब्ने मरियम वो बुरा हो, ठीक है। ये उनको नहीं पता कि क्या होने वाला है, उन्होंने अल्लाह की हजूर दोनों को सुपुर्द कर दिया। और पनाह किससे है, मिनश शैतान रजीम, शैतान रजीम से पनाह में। तो अब देखिए कि एक बुज़ुर्ग खातून हैं और एक अल्लाह ताला हैं, गुफ्तगू क्या हो रही है। तो बेटी होने वाली है, उनको पता नहीं है कि बेटी होने वाली है, उन्होंने नज़र मान दी है कि मेरा जो बेटा होगा मैं उसको अल्लाह की राह में नज़र करती हूँ, लेकिन खुदा का करना था कि बेटी हो गई। अल्लाह ने कहा कि मुझे मालूम था तुम बेटी जनोगी, लेकिन मुझे लड़का ही नहीं चाहिए था, लड़की ही चाहिए थी। और फिर उनकी वालदा ने, सईदा मरियम की वालदा ने कहा कि मैं इस लड़की का नाम मरियम रख रही हूँ और इसको और इसकी औलाद को शैतान रजीम की पनाह में देती हूँ। ये लफ्ज़ भी उन्होंने जो चुना है हैरत अंगेज़, यानी हमारे यहाँ बड़े बड़े मुफस्सरीन शैतान रजीम को नहीं समझ सके। तो उसका नतीजा क्या निकला कि बस हमारे यहाँ भी क्या तर्जमा होता है, मर्दूद शैतान से पनाह में देती हूँ। शैतान रजीम का मतलब ये नहीं है, मर्दूद तो है ही इसमें कोई शुबा नहीं, लेकिन शैतान रजीम का मतलब ये नहीं है। कुरान मजीद ने ये वाज़ेह तौर पर सूरा मुल्क वगैरह में और आगे चल कर बताया है कि जो शयातीन हैं उनमें से कुछ ज़मीन से उड़कर जाते हैं और ऊपर जाकर खुदा के फरिश्तों की बातें सुनने की कोशिश करते हैं, फिर उनको पत्थर मार के डरा के भगा दिया जाता है। जिनको पत्थर मारे जाते हैं उनको शैतान रजीम कहते हैं, रजम से आइए, रजम का मतलब पत्थर मारना है, ठीक है। कुरान सूरह नज़र में, सूरह मुल्क में बयान किया, रजूमन लिशयातीन, मैंने ऊपर कोई पहरे की जगह बना रखी है जो शैतानों को पत्थर मारने की जगह है, रजूमन लिशयातीन। तो शैतान रजीम का मतलब है कि वो शयातीन जो कहानत के सिलसिले में जुड़े होते हैं, जो ये इस कोशिश में होते हैं कि ऊपर मलाए आला की बातें सुनकर आकर अपने इंसानी मौकलों के सुपुर्द करें, उनको पत्थर मार के भगा दिया जाता है। हर जिन रजीम नहीं होता और हर जिन शैतान भी नहीं होता, ठीक है। तो शयातीन वो जो खबरें लाने की कोशिश करते हैं, उनके बारे में बात हो रही है। तो अब हज़रत ईसा को बनना है नबी, तो नबी बनने के लिए ज़रूरी है कि वो उन शैतानों के हाथ में ना हो जो पैगाम रसानी करते हैं, जो गैब की खबरें चुरा कर ला कर आकर अपने मौकलों को देते हैं, नजूमियों को देते हैं। तो फरमाया कि मैं अपने इस बेटी को और इसकी औलाद को वो शैतानों से महफूज करना चाहती हूँ, क्योंकि उनके जहन में कि मैं दीन की खिदमत के लिए लगाना चाहती हूँ। तो दीन की खिदमत के लिए काहन नहीं चाहिए होता, दीन की खिदमत के लिए नेक और साले लोग चाहिए होते हैं जो अल्लाह की किताब को पढ़कर उसकी हदायत दे सकें। तो जो ये होते हैं नजूमी टाइप किस्म के, आमिल किस्म के लोग, इनके पास कोई सच्चाई की बात नहीं होती है। तो गोया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कहा गया है कि आप भी शैतान रजीम से पनाह मांगें और हम औज़ बिल्लाह मिन शैतान रजीम कहते हैं, तो उसका मतलब यही होता है कि ये कुरान मजीद, नबी सल्लम जब कहते थे कुरान सुनाने से पहले औज़ बिल्लाह मिन शैतान रजीम, तो इसका मतलब ये होता था कि ये कुरान मैंने उन शैतानों से नहीं लिया जिनको पत्थर मार के भगाया जाता है, बल्कि ये अल्लाह का नाजिल करदा है। इसी तरह यहाँ पर ये बात कही जा रही है कि हज़रत मरियम की वालिदा ने जो पनाह मांगी थी, उसके नतीजे में हज़रत ईसा शैतान रजीम की वही पर बात नहीं करते थे, उनके इल्हामात पर या उनके झूठ के ख़बरों पर, बल्कि वो अल्लाह ताला की पनाह में थे और वो वाक़ियातन अल्लाह के नबी थे। ये है शैतान रजीम। ये लोग इसको फरामोश कर देते हैं, बस मर्दूद शैतान तर्जमा कर देते हैं, तो उसकी पूरी वजाहत नहीं होती। शैतीन सारे के सारे ऊपर नहीं जाते हैं, जो जाते हैं उनको पत्थर पड़ते हैं, उनको शैतान रजीम कहा जाता है। और शैतान रजीम अल्लाह ताला ने इब्लीस को भी कहा था। इब्लीस जो है वो सबसे बड़ा शैतान रजीम है, और यहाँ जो कि वाहिद ही इस्तेमाल हुआ है तो जहन उधर जा सकता है। तो शैतान रजीम का मतलब यह है कि अल्लाह ताला ने इब्लीस को कहा था कि तुम अब दफ़ा हो जाओ मेरे दरबार से, अब अगर आने की कोशिश करोगे तो पत्थर पड़ेंगे। पहले ऐसा नहीं था, पहले वो जा सकता था, लेकिन आदम अलैहिस्सलाम के बनाने के बाद जिन्नात के ऊपर पाबंदी लग गई थी। अब जिन्नात अल्लाह की मजलिस में नहीं जा सकते थे, आदम अलैहिस्सलाम से पहले वो जा सकते थे, आदम अलैहिस्सलाम के बाद वो नहीं जा सकते थे। अगर इबलीस ये मुहिम ना पकड़ता जो उसने पकड़ी कि मैं इंसानों को गुमराह करूँगा, तो शायद रास्ता खुला रहता, लेकिन फिर यह बंद कर दिया गया। तो अब ये हज़रत मरियम की वालिदा की वो पुकार है, वो दुआ है, वो नज़र है, जो उन्होंने पूरी मोहब्बत पूरी अकीदत के साथ खुदा के हजूर पेश कर दी है। अब ये किस्मत देखिए कि नज़र करने वाली इमरान की ज़ौजा मोहतरमा हैं और कबूल करने वाले अल्लाह ताला। फरमाया फ़तक़ब्बलहा रब्बुहा बेकबूलिन हसन। अल्लाह ताला ने उनकी बेटी को कबूल कर लिया बड़े ही अच्छे तरीके के साथ। नज़रें और भी अल्लाह ने कबूल की होंगी, लेकिन ऐसी नज़र के उठा के ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा बना दिया, ये पहले नहीं हुआ था ना बाद में हुआ। फ़तक़ब्बलहा रब्बुहा बेकबूलिन हसनिन, अल्लाह ताला ने उनको कबूल कर लिया बड़े ही अच्छे तरीके के साथ। यानी जो पूरा प्रोग्राम था अल्लाह ताला, जिसके लिए अल्लाह ताला ने बोला कि लड़का जो है वो लड़की की तरह नहीं हो सकता था, मैंने लड़की ही कबूल करनी थी, लड़की ही की नज़र मानी गई, लड़की ही मैंने कबूल करनी थी, तो इसलिए अल्लाह ने उसको बहुत ही अच्छे तरीके से कबूल कर लिया। अब अच्छे तरीके का मतलब यह है कि जो कुछ बाद में हुआ वो उस कबूलियत का नतीजा था। अब आप समझ सकते हैं कि वो वल्लाहु समीउन अलीम का क्या मतलब है, और ख़ुद हज़रत ज़ौजा इमरान ने जो अल्फाज बोले हैं वो भी इन्ना कान्त समीउल अलीम। तो यहाँ असल में सुनने का अमल ज़्यादा है कि दुआ सुनना या नज़र की पुकार सुनना, ये सब कुछ उसमें शामिल है। व अम बताहा नबातन हसना, और अल्लाह ने उसको परवान चढ़ाया बहुत ही अच्छा, जैसे कोई माली अपने पौधे को परवान चढ़ाता। अम बताहा ये उगाने का मतलब होता है, अल्लाह ने सैयदा मरियम को उगाया बहुत अच्छा उगाना, यानी लोग भी मतलब ये है, मुराद है कि बहुत अच्छे तरीके से पाला पोसा। ये बात ज़ाहिर के पाला तो उनकी वालदा ने होगा, या हज़रत ज़करिया के पास जब चली गई तब शुरू में उनको उनकी वालदा ने पाला होगा। तो उसमें अल्लाह ताला ने फिर एक पहरा सा, एक माहौल सा बना दिया कि मैंने इसको चुना है, तो अब ये चुनने के बाद इनकी परवरिश हो। तो लोग कुरान पढ़ते रहते हैं, उनको हज़रत मूसा के हवाले से सूरह ताहा में ये जुमला अल्लाह ताला का नज़र से गुज़रा होगा कि जब अल्लाह ताला ने तूर पे उनको नबूवत दी है तो फरमाया कि अस्तनातुका लिनफ्सी, मैंने तुम्हें अपने लिए तरबियत किया है, अपने लिए मैंने तुम्हें बनाया है। तो इसका मतलब है कि फिरौन के पास जो कुछ रहे, वहाँ जो कुछ उनके साथ हुआ, फिर उनके हाथों जो आदमी मारा गया, उसके बाद जो कुछ हुआ, फिर वो भाग कर मदियन चले गए, तो वहाँ जो कुछ हुआ, फिर अब वहीं तक, ये सारा कुछ अल्लाह ताला ने उनको तरबियत किया था। ऐसा ही सैयदा मरियम की जो इब्तदाई ज़िंदगी से लेकर हज़रत ज़करिया के पास जाने तक को अल्लाह ताला ने कहा है कि वअंबतः नबातन हसना, अल्लाह ताला ने सैयदा मरियम को बड़े ही अच्छे तरीके से परवान चढ़ाया, परवरिश किया। वकफ़लहा ज़करिया, और हज़रत ज़करिया के हाँ उनकी कफालत की ज़िम्मेदारी डाल दी। यह अब ज़िक्र बिला वजह नहीं है, ये ना सोचिए कि अल्लाह ताला कहानी सुना रहे हैं तो ज़करिया का ज़िक्र कर दिया, नहीं, हज़रत ज़करिया का ज़िक्र भी हज़रत ईसा की विलादत के हवाले से हो रहा है, ये वाज़ेह रहना चाहिए। हज़रत ईसा की विलादत मौजज़ाना है, और ख़ुद हज़रत ज़करिया के हाँ जो बेटा पैदा हुआ है हज़रत याहिया, वो भी उसी तरह की चीज़ है। लेकिन अल्लाह ताला दो चीज़ों में फ़र्क बताएंगे कि हज़रत याहिया में और हज़रत ईसा की पैदाइश में क्या फ़र्क है, लेकिन दोनों मौजज़ाना है, मौजज़े की टाइप्स तो हैं, वो आगे जब पहुँचेंगे तो मैं इंशाअल्लाह। वकफ़लहा ज़करिया, तो हज़रत ज़करिया जो हैं, इनके बारे में हमारे मुफस्सरीन का इख्तलाफ़ है कि ये नबी हैं कि गैर नबी हैं। हज़रत ज़करिया के बारे में सूरह मरियम से एक ख़्याल सा पैदा होता है कि ये नबी नहीं थे। ज़करिया दो हैं, तौरात या अल्लाह की जो पुरानी किताबें हैं उसके मुताबिक एक ज़करिया नबी हैं और एक ज़करिया गैर नबी हैं। जो बाइबल में इन ज़करिया का ज़िक्र है वो काहिन के तौर पर है, यानी यूँ समझ लीजिए काहिन एक नेगेटिव मानी में होता है, एक पॉजिटिव मानी में होता है। एक काहिन वो होते हैं जो जादू टोने का काम करते हैं और इस तरह की चीज़ें, एक काहिन वो होते हैं जो उलमा वाला काम करते हैं। तो ये आलिम थे, किसी मकतबे फ़िक्र के बड़े लोगों में से थे, जैसे हमारे यहाँ बाज़ उलमा देवबंदियों में से होंगे, बरेलवियों में से, अहले हदीस में से, तो ये भी किसी मकतबे फ़िक्र के बड़े लोगों में से थे। और सूरह मरियम के आगाज़ से पता चलता है कि इनको जो बशारत हुई तो इनको यकीन नहीं हुआ कि ये अल्लाह की तरफ से है, तो यह सच्ची है कि नहीं है, तो उन्होंने निशानी मांगी, जो इस बात की अलामत है कि वो नबी नहीं थे। ये एक सवाल पैदा होता है। तो जो ज़करिया नबी हैं वो इन ज़करिया से पहले कोई 400-500 साल पहले के हैं। तो बहरहाल हमारे यहाँ इनको नबी माना जाता है बहुत सारे लोगों के यहाँ, और बहुत सारे लोग इनको गैर नबी मानते हैं, इख्तलाफ़ है। बाकी जो तहकीक करने वाले हैं वो तहकीक कर सकते हैं। तो फरमाया कि मैंने इनकी कफालत ज़करिया को दे दी। ये ज़करिया जो हैं, ये हज़रत यहिया के वालिद हैं। कुल्लमा दाखला अलैहा ज़करिया अल-महराबा वजदा इंदहा रिस्का, जब भी हज़रत ज़करिया हज़रत मरियम के पास उनकी मेहराब में जाते तो उनके पास एक रिस्क सा पाते थे। अब ये दो तीन चीज़ें तारीखी तौर पर मालूम हो रही हैं कि हज़रत मरियम को कफालत के बाद मस्जिद ही में ठहराया गया, जैसे मैं पहले अर्ज़ कर रहा हूँ कि लोग ये नज़र कर देते थे तो फिर वो अल्लाह के घर की खिदमत करते थे, तो मेहराब में उनको ठहराया गया। मेहराब समझ लीजिए कि हुजरा कह लीजिए आज की ज़ुबान में, लेकिन वो चूँकि बने होते थे, छत उनकी मेहराबों वाली होती थी, तो इसलिए हर कमरे का एक मेहराब होती थी, तो वो डॉट का कमरा बना होता था तो उसको मेहराब कह लेते थे, तो लेकिन मुराद कमरा है। तो जब भी हज़रत ज़करिया मेहराब में सैयदा मरियम के पास जाते तो उनके पास एक रिस्क पाते। इस रिस्क के ऊपर भी मुफस्सरीन का इख्तलाफ है। कुछ लोगों का ख्याल है कि उनके पास गैर मौसमी फल पाते, मसलन गर्मियों में किन्नो संतरे पाते हैं और सर्दियों में गर्मियों वाले फल पाते, तो उनको सवाल पैदा होता। एक राय ये है। दूसरी राय यह है कि वाजदा इंदा रिस्कन का मतलब है कि सैयदा मरियम बातें इतनी हैरत अंगेज़ करती थीं कि जो नबियों और वलियों को भी मुयस्सर नहीं है, इस तरह की बातें करती थी। बड़ी गहरी बातें, दीन का फहम वाली बातें, क्योंकि पीछे अल्लाह ताला ने जिक्र किया, वाम बता नबातन हसना, पाला मैंने था, अल्लाह ने पाला था। तो उनको पता नहीं क्या क्या बसीरतें अता की हुई थी। तो जब हजरत ज़करिया उनके पास जाते, बातचीत करते, तो उनको मालूम होता कि कोई ख़ास फैज़ान है अल्लाह का जो इनके ऊपर हो रहा है। ये सादा बच्ची नहीं है, ख़ास फैज़ान है अल्लाह ताला का। तो वाजदा इंदा हर रिस्कन कमानी ये है। मुझे यही राय अच्छी लगती है बजाय गैर मौसमी फलों के, कि सैयदा आगे जो जिक्र होगा आगे चलकर हजरत उनके जुमलों का, तो उससे आप अंदाज़ा लगाएंगे। जब फरिश्ते आए हैं तब उनकी गुफ्तगू से आप अंदाज़ा करेंगे कि वो बिलाशुबा बहुत ही ज़हीन, फ़तीन, दीन की समझ वाली खातून थी। और अभी ये नौजवान नबातन हसना वाली 18-19 साल की एक खातून जिसको बला की ज़हानत हासिल है और दीन का फहम हासिल है। आगे जो हज़रत ज़करिया दुआ करेंगे वो भी तय्यब औलाद की दुआ कर रहे हैं, ये नहीं कि मोजज़ात वाली औलाद। तो इसका मतलब है कि हज़रत ज़करिया ने हज़रत मरियम को बहुत पाकीज़ा सिफत पाया है, जिसको वो इंदहा रिस्कन की बात कर रहे हैं। ताला या मरियम अन्ना लकी हाजा। तो आगे से हज़रत ज़करिया ने कहा कि या मरियम, ये बातें या ये फल तुम्हें कहाँ से आते हैं? कालत हुआ मिन इंदिल्ला, उन्होंने कहा कि ये अल्लाह की तरफ से। ये वाज़ेह रहना चाहिए, कभी नबूवत ख़त्म नहीं हुई। हमारे यहाँ जो एक इमाम है इब्ने हज़्म, उन्होंने इस जुमले की वजह से सैयदा मरियम को अम्बिया में शुमार किया है। तो उन्होंने कहा कि ये तुम्हारे पास चीज़ें कहाँ से आती हैं, ये रिस्क, ये अनायत, ये ज़हानत वाली बातें, ये गहरी बातें, ये पाकीज़गी वाली बातें तुम्हारे पास कहाँ से आती हैं? तो आगे से सैयदा मरियम ने कहा, हुआ मैंने दिल, ये सारी बातें जो हैं अल्लाह की तरफ से हैं। इन्नल्लाह यरज़ुकु मन यशाउ बग़ैर हिसाब, क्योंकि अल्लाह ताला जिसके ऊपर अनायत करना चाहे तो बग़ैर हिसाब कर देते हैं। ये जुमला खुद बता रहा है कि वो किस नौयत की है। आजिज़ी का जुमला है कि मेरा अपना कोई कमाल नहीं है, अल्लाह ने दिया है, और अलबत्ता अल्लाह ताला जिसको चाहते हैं बग़ैर हिसाब दे देते हैं। अब बग़ैर हिसाब का अल्लाह ताला जुमला बोले तो मतलब और है। सैयदा मरियम बोल रही तो वो कह रही हैं कि मैं नहीं, कोई ऐसा कारनामा नहीं किया कि जिसके जज़ा में मुझे मिला हो, बस ये अल्लाह ने खुद ही अपनी तरफ से दे दिया है, कोई हिसाब किताब नहीं इसमें। तो इस दुनिया की वैसे सारी की हकीकत यही है, जो कुछ मुझे आपको मिला होता है वो बग़ैर हिसाब होता है, हमने कोई कारनामा नहीं किया हुआ। जिसके ऊपर आजमाइश आ रही होती हैं उस लाजम नहीं है कि उसने कोई गुनाह किया हो, जिसको कुछ नेमतें मिल रही हो तो लाजम नहीं होता कि उसने कोई बड़ा कारनामा किया है, नहीं। बल्कि जो पैदाइश अपनी देख लीजिए कि हमारी पैदाइश कहाँ कहाँ हो जाती है, कोई बादशाहों के घर पैदा हो गया, कोई फ़कीरों के घर पैदा हो गया, कोई हमारे जैसे दरमियाने लोगों के घर पैदा हो गया। तो ये सब कुछ खुदा के फैसले हैं। किस वजह से? क्या हमने कोई पैदाइश से पहले गुनाह किया था, कोई नेकी का काम किया था? नहीं। तो जो कुछ है यहाँ बग़ैर हिसाब है, लेकिन बग़ैर हिसाब का मतलब सिर्फ इसी मानी में, बाकी जो कुछ अल्लाह ताला ने पैदा किया है, मुझे जहाँ पैदा होना चाहिए था वहीं पैदा हुआ, वो बिल्कुल पढ़ी लिखी हिसाब किताब के मुताबिक है। आप लोगों को जहाँ पैदा होना चाहिए था वहीं पैदा हुए हैं, वो खुदा के बिल्कुल ठीक ठीक अंदाजे, ठीक तकदीर के मुताबिक है। लेकिन बग़ैर हिसाब इस मानी में कि मेरा कोई कारनामा नहीं है कि अल्लाह ने मुझे पैदा ही कर दिया, ना बनाते तो मैं क्या कर सकता था। तो मेरा कोई इस्तेहकात नहीं है, मेरा कोई कारनामा नहीं है जिसकी वजह से मुझे ज़िंदगी दी गई या वजूद बख्शा गया या फलां के घर पैदा किया गया और फलां के घर पैदा नहीं किया गया। अगर अल्लाह ताला मुझे किसी बदमाश के घर पैदा कर देते तब, मुझे कोई बकरी और गाय बना देते तब, मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। मेरा तो ये बग़ैर हिसाब का मतलब मेरी तरफ है। तो सैयदा मरियम ने भी अपनी तरफ बात जोड़ी कि मेरा कोई कारनामा नहीं है, बस अल्लाह ने बग़ैर हिसाब दे दिया है अल्लाह की तरफ से, मेरी तरफ से नहीं है। तो आप देखिए कि ये जुमला सुनते ही अगर आप तकवे की इस लाइन से वाकिफ़ हैं तो ये जुमला सुनने वाला तड़प उठेगा कि ये जुमला किसी ज़हीन, बहुत पारसा खातून का जुमला है, आजिज़ाना इनकसारी वाला, तकवे वाला जुमला है कि भाई हम होते तो कहते मैं बड़ी मेहनत की है, सारी रात पढ़ता रहता हूँ, किताबें खोलता हूँ मैं, देखो कुरान पढ़ते हुए 20 साल गुजर गए हैं, ये करते हुए 40 साल गुजर गए। उन्होंने कहा नहीं, ये सब कुछ अल्लाह की तरफ से है और अल्लाह ताला ने हिसाब के बगैर दिया, मेरा कोई कारनामा नहीं है। अब जब ये बात उन्होंने सुनी तो अब हज़रत ज़करिया तड़प उठे हैं, हुनालिका दा ज़करिया रब्बा, ठीक इसी मौके पर हज़रत ज़करिया ने अपने रब को पुकारा। अब ये सूरह मरियम से जाकर पता चलेगा कि ये दुआ उनके दिल में यहाँ पैदा हुई है और फिर जाकर मेहराब में भी अपने कमरे में जाकर की है। काला रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तैयबा, तो उन्होंने दुआ की कि ऐ मेरे रब, ख़ास अपनी तरफ से, क्योंकि मिन लदुनका का लफ्ज़ मैं वाज़े करता हूँ, ख़ास अपनी तरफ से मुझे एक पाकीज़ा औलाद अता कीजिए। इन्ना का समी दुआ, अब समी का लफ्ज़ आपने छोड़ना नहीं है। ऊपर अल्लाह ताला ने बोला था, हज़रत मरियम ने की वालदा ने जब दुआ की तब बोला है, अब हज़रत ज़करिया बोल रहे हैं कि तू दुआएं सुनने वाला। उन्होंने तो लफ्ज़ ही खोल दिया, उन्होंने पूरी बात, इन्ना का समी दुआ, आप पुकार को सुनने वाले हैं। ऊपर अल्लाह ने कहा था कि मैंने आदम को, नूह को, इब्राहिम को, आले इमरान को चुना है अपने इल्म की बुनियाद पर और उनकी दुआओं की बुनियाद पर। सैयदा मरियम की वालदा जो हैं वो कह रही हैं कि ऐ रब मेरी इस नज़र को कबूल फरमा क्योंकि तू समी उल अलीम है। हज़रत ज़करिया अब दुआ कर रहे हैं कि या अल्लाह तू मुझे औलाद दे, पाकीज़ा औलाद दे, पाकबाज़ औलाद दे, क्योंकि तू दुआ ही सुनने वाला है। सूरह मरियम में जब जाएंगे तो वहाँ उन्होंने एक और जुमला भी बोला है कि मैं कभी भी अल्लाह से दुआ करके बदबख्त नहीं ठहरा, फ़ायदा ही हुआ है। तो यहाँ पर उन्होंने, अल्लाह ताला ने उनको जुमले का एक हिस्सा, अल्लाह ताला मौके के लिहाज से बाज़ बातें छोड़ देते हैं, बाज़ बयान कर देते हैं, कुछ बातें यहाँ बयान कर दी हैं, कुछ वहाँ, क्योंकि यहाँ जितनी ज़रूरत थी उतनी बयान कर दी हैं। तो इस मौके पर जैसे ही सैयदा मरियम की तरफ से ऐसी बात सुनी इस तरह की पाकीज़गी की, अब देखिए कि जो बात हो रही है ज़ुर्रियतन तैयबा की, तो सैयदा मरियम का भी यही पहलू नुमाया हुआ है उस पूरी बात से भी जो उन्होंने अभी कही है, मैंने अभी जिसका तर्जमा करके आपको बताया, और उनकी बाकी बातें जब भी, क्योंकि कुरान ने यह नहीं कहा कि पहली दफ़ा ऐसा हुआ, कुल्लामा दाखला, जब भी गए तो उन्होंने वहाँ पर यही चीज़ महसूस की। अब हज़रत सूरह मरियम में हम जाएंगे जब, तो वहाँ अल्लाह ताला ने बताया है कि हज़रत ज़करिया बहुत बूढ़े हो चुके थे और उनकी ज़ौजा मोहतरमा शुरू से बे औलाद थी, औलाद जनने के लायक नहीं थी, उनके अंदर बायोलॉजिकल कमज़ोरी थी, वो औलाद पैदा नहीं कर सकती थी। अब अल्लाह से दुआ कर रहे हैं, आप भी इस काबिल नहीं हैं कि औलाद पैदा कर सकें, बेगम भी आपकी इस काबिल नहीं है कि औलाद पैदा कर सके, तो इसलिए उन्होंने फिर जुमला क्या बोला है, रब्बी हबली मिन लदुनक, ऐ अल्लाह ख़ास अपनी तरफ से, अपने पास से मुझे औलाद दे दे। मतलब कि मेरे अंदर ताकत नहीं, मेरी बीवी के अंदर सलाहियत नहीं, तो तू अब तू ही कुछ फैज करे तो करे। सूरह मरियम में जाएंगे तो वजह भी बताएंगे कि मैं औलाद क्यों मांग रहा हूँ, बच्चों का शौक़ नहीं है सिर्फ, बल्कि उन्होंने बताया कि मेरे बाद मेरा कोई वारिस नहीं है, वो जो रवायत चली आ रही है, जो दीन चला आ रहा है उसको संभालने वाला, तो कोई दीन को संभालने वाला दे। तो ये अब दो बुज़ुर्ग हैं, एक सैयदा मरियम हैं, एक हज़रत ज़करिया हैं। हज़रत ज़करिया इतने बड़े आदमी होने के बावजूद सैयदा मरियम से मुतासिर हो गए हैं और अपने लिए एक औलाद मांग रहे हैं, और औलाद भी उस वक्त मांग रहे हैं कि जब दुनियावी एतबार से कुछ होने वाला नहीं है, कोई इम्कान नहीं है। अब अल्लाह ने दुआ सुन ली, फ़नादतुल मलाइकतु वहुवा काइमुन युसल्ली फिल मेहराब, तो फरिश्तों ने आपको आवाज़ दी, जबकि हज़रत ज़करिया जो थे वो मेहराब में खड़े नमाज़ पढ़ रहे थे। अब ज़ाहिर है जब भी उन्होंने दुआ की है मेहराब में की है, सैयदा मरियम के पास बैठकर की है, लेकिन फरिश्ते जब आए हैं तो उस वक्त भी आप मेहराब में खड़े ये दुआ कर रहे थे या वैसे ही इबादत कर रहे थे, तो फरिश्तों ने आपको पुकारा जबकि वो खड़े थे नमाज़ पढ़ रहे थे मेहराब में। इससे आप नमाज़ की तारीख़ भी जान सकते हैं कि नमाज कोई नबी अकरीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन में नहीं है बल्कि पहले से चली आ रही है। अब उन्होंने पुकारा, पुकार कर क्या कहा, अन्नल्लाह युबशिरु का बे याहिया, अल्लाह ताला आपको याहिया की बशारत दे रहे हैं, मुसद्दिकन बे कलिमतिन मिन अल्लाह, वो तस्दीक करने के लिए भेजे जा रहे हैं अल्लाह के एक कलिमा की, व सैयदन वो सरदारों जैसे होंगे, व हसूरन और बिल्कुल परहेजगार होंगे, व नबियन मिन सालहीन और साले नबियों में से होंगे। क्या बशारत। तो अब ज़ुर्रियतन तैयबा को देखिए कि अल्लाह ने कैसे बयान किया कि वो याहिया है उनका नाम होगा, वो अल्लाह के एक कलमा की, मैं इसको वाज़े करता हूँ, बशारत देने के लिए आएंगे, तस्दीक करने के लिए आएंगे, वो सरदार होंगे, वो बिल्कुल पूरे हसूर कहते हैं दुनिया की लज्जतों से बचा हुआ, बिल्कुल अलग, महसूर नहीं होता उर्दू में बोलते हैं, कि उसने अपने ऊपर पहरे लगा रखे, इतना कंपोज्ड, इतना गुनाहों से बचा हुआ, व नबियम मिन सालेहीन, और वो सालेहीन में से होगा, नबियों में से होगा। ये अब दुआ कबूल हुई, इसमें अल्लाह ताला ने याहिया की बशारत दी है। मुसद्दिकन बेकलमत मिन अल्लाह का मतलब है कि हज़रत ईसा की तस्दीक करने के लिए आएंगे। आगे चलकर कलमत मिन अल्लाह के मैं वाज़े करूँगा कि जब सैयदा मरियम को बशारत मिली है तो उनको इन्हीं अल्फाज में मिली है कि अल्लाह की तरफ से आपको एक कलमे की बशारत दी जाती है। तो कलमत मिन अल्लाह का मतलब है कि अल्लाह ताला कलमा कुन से जिस चीज़ को पैदा कर रहे हैं उसकी तस्दीक करेंगे हज़रत याहिया। हज़रत ईसा की विलादत उन विलादतों में से है, इस पर आगे चलकर मजीद वाज़े करूँगा जब उनका ज़िक्र आएगा, कि जो कलमा कुन से पैदा हुए हैं, हज़रत आदम कलमा कुन से पैदा हुए हैं, हज़रत ईसा कलमा कुन से पैदा हुए हैं, बाकी कोई नबी वली मैं आप कलमा कुन से पैदा, डायरेक्ट कलमा कुन से पैदा नहीं हुए, ये वाज़े रहना चाहिए। डायरेक्ट कलमा कुन और इनडायरेक्ट कलमा कुन का मतलब ये है कि हमारे लिए शुरू ही में जब आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया था तो हमारे लिए कलमा कुन जारी हो गया था कि फलां फलां आदमी को आपकी औलाद में पैदा होना है, लेकिन हज़रत ईसा के लिए स्पेशल कलमा कुन नया कहा गया है। यही सूरत हाल हज़रत आदम के साथ हुई है। तो सिर्फ दो आदमी बराह रास्त कलमा कुन से पैदा हुए हैं, एक हज़रत आदम और एक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, जिनको डायरेक्ट कलमा कुन बोला गया है। वो आगे जब पहुँचेंगे तो उसकी बशारत देने, उसकी तस्दीक करने के लिए हज़रत याहिया को भेजा जा रहा था। तो मैंने जैसे बताया था कि हज़रत ज़करिया का ज़िक्र बिला वजह नहीं है, यहाँ पर कहानी सुनाने के लिए नहीं है। अल्लाह ताला जो तमहीद बांध रहे हैं हज़रत ईसा की विलादत के लिए, उसमें दो नुक्ते याद रखिए, फिर बाकी इंशाअल्लाह अगली दफ़ा करेंगे। एक ये कि ये हज़रत ईसा हज़रत इमरान के घर पैदा हुए, जो बिल्कुल हज़रत इब्राहिम जैसे थे, हज़रत नूह जैसे थे, हज़रत आदम जैसे थे, ठीक है। इन्हीं की हाँ एक औरत ने, हज़रत इमरान की एक की बीवी ने अल्लाह से नज़र मानी, तो हज़रत इमरान भी इंसान और उनकी बीवी भी इंसान, उनके यहाँ जो औलाद पैदा हुई सैयदा मरियम वो भी इंसान, ये उन्होंने नज़र मानी, अल्लाह ताला ने कबूल कर ली। अल्लाह ताला को अपने प्रोग्राम के लिए लड़के की ज़रूरत नहीं थी, लड़की की ज़रूरत थी, चुनाचे अल्लाह ताला ने सैयदा मरियम को कबूल कर लिया। कबूल कर लिया तो अपने उस मकसद के लिए उनको परवान चढ़ाया, तरबियत की। जब वो बड़ी हो गई तो हज़रत ज़करिया के हवाले कर दिया, वो भी एक साले आदमी थे, मज़ीद तरबियत के लिए, दीन सिखाने के लिए, जो कुछ भी है। लेकिन मेरे ख्याल में इस मकसद से नहीं, बल्कि हज़रत ज़करिया को याहिया पैदा करने के लिए उभारना था। तो हज़रत ज़करिया ने हज़रत मरियम को जब देखा, मुतासर हो गए, उनकी बातें सुनी तो कहा कि मुझे भी ऐसी औलाद होनी चाहिए। चुनाचे उन्होंने दुआ मांगी इस सूरत हाल में कि औलाद होने के काबिल नहीं थे, दुआ मांगी और अल्लाह ताला ने कबूल कर ली, तो हज़रत याहिया को पैदा कर दिया गया। तो दो मकसद हैं, हज़रत याहिया को मुसद्दिकन बिकलमत मिन अल्लाह, हज़रत ईसा की तस्दीक करने के लिए भेजा जा रहा है, और दूसरा ये कि उनकी विलादत भी मौजज़ाना है, इनकी विलादत मौजज़ाना है, वो आगे जुमलों से वाज़े हो जाएगी, और हज़रत ईसा की विलादत भी मौजज़ाना है। तो दो मकसद हैं हज़रत याहिया के, एक ये बताने के लिए, मिसाल के तौर पर हज़रत मरियम बग़ैर बाप के पैदा हो गए और हज़रत याहिया बूढ़े माँ बाप के, जिनके यहाँ औलाद नहीं होती, उनके यहाँ पैदा हो गए, ठीक है। तो अभी थोड़ी देर पहले, एक साल, दो साल, पाँच साल कर लीजिए, 5 साल पहले मौजज़ाना तौर पर हज़रत यहिया पैदा हो गए हज़रत ज़करिया के घर, उनकी नबूवत का ऐलान भी कर दिया हज़रत ज़करिया ने, और फिर हज़रत ईसा पैदा हो गए। तो अब हज़रत यहिया की विलादत की वजह से लोग तैयार थे कि मौजज़ाना तरीके पर कुछ भी हो सकता, तो हज़रत ईसा की विलादत उनको ज़्यादा कबूल करने में मुश्किल पेश नहीं आई होगी। और दूसरा काम यह हुआ कि हज़रत यहिया ने कहा कि हाँ ये तो अल्लाह ने पैदा किया, तस्दीक हो गई। तो लेकिन इंजीलों के अंदर हज़रत यहिया की विलादत के पहलू से तस्दीक नहीं है, लेकिन इस पहलू से तस्दीक का जिक्र हुआ है कि उन्होंने आपको नबी करार दिया है और मसीहा करार दिया है। वो इंशाल्लाह जब आगे चलेंगे तो मैं तफसील से करूँगा, अब वक्त हो चुका है तो यहाँ रोक लेते हैं। वा आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।